गण में वे वर्धमान महान इंद्र चले समय सार का अनुशीलन भाग दो पेज नंबर 212 ये बनारसी दास का जो खंड है वो पढ़ते हैं क्योंकि पांडे राजमल जी ने जो कमेंट्स किए हैं वो अपन ने पढ़ लिए हैं और उसी के अनुसार ये छंद उन्होंने बनाया है। इस छंद को पढ़ते हैं ये ज्यो माटी में कलश होने की कलश होने की शक्ति रहे ध्रुव मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति निरंतर विद्वान है। माने उपादान है त्रिकाली उपादान तो वो उसमें शक्ति है। अब बनेगा कब उसमें फिर पांच बातें हैं उनके विस्तार में अपन को नहीं जाना है। अब ये घड़ा बनने की क्या प्रक्रिया है अब आज समझानी पड़ती है। पुराने जमाने में तो अपन ने अपने गांवों में घड़े बनते देखे थे इसलिए कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज कल के बच्चों को गाय क्या होती है ये भी बताना पड़ेगा। दूध पिएंगे रोजाना गाय का वो डेयरी से आएगा। गाय कैसा जानवर होता है हाथी जैसा होता है कि बकरी जैसा होता है उसे कुछ पता नहीं फोटो में बताना पड़ेगा। अब जयपुर में ही ऑर्डर आ गया है कि यहां से 30-40 किलोमीटर दूर तक कोई गाय नहीं रख सकता उसे इसके बाहर जाना पड़ेगा तो फिर गाय देखने को नहीं मिलेंगी। हमारे बच्चों को पोते पोतियों को उन्हें भी गाय भी वैसे ही समझाना पड़ेगा जैसे कि हमको और दूसरे जानवरों को शेर को समझाना पड़ता कि चिड़ियाघर में जाकर दिखाना पड़ता है गाय को भी दिखाना पड़ेगा। जब कुमार घड़ा बनाता है तो एक तो घुमार कुमार है और एक चक्का है। अब चक्र कैसा है ये ऐसा घूमने वाला चक्र है और हमारे जितने चक्र घूमते हैं वो सब ऐसे घूमते हैं। रेल का हो पहिया हो स्कूटर का हो कार का हो वो भी चक्का ही तो है ना। चक्र माने चक्का वे सारे चक्र इस तरह के घूमते हैं और ये इस तरह का घूमता है। अब उसमें क्या लिखा देखो दंड चक्र चीवर कुलाल चार चीजें होंगी। अरे क्या है दंड माने डंडा डंडा माने कौन सा कुमार उस डंडे को लेके चक्र को घुमाता है तो इस तरह से डंडा उसमें लगा करके और घुमाता है इतना तेज घुमा देता है कि डंडे को रख देता है जमीन पर और वो घूमते हुए चक्र पर घड़े को बनाता है। तो दंड माने दंडा फिर चक्र में चका और चीवर क्या है ये एक एक कपड़ा होता है छोटा सा और एक डोरा होता है दोनों क्योंकि सूत के बने हुए हैं इसलिए दोनों का नाम है चीवर। वो कपड़े को हाथ में लेता है जब वो इस तरह से करता है ना तो उस कपड़े से आकार देने में उसे सुविधा होती है और जब वो घड़ा बन जाता है तो उसे काटने के लिए एक डोरे का प्रयोग करता है पैसा लगा करके उसे काट देता है। तो अब चार चीजें हो गई है दंड चक्र चीवर और कुलाल माने कुमार ये बाह्य निमित्त हुए ये सब बाह्य निमित्त हैं। देखो कल अपन ने पढ़ा था ना कि बाह्य निमित्त काय को बताया था मोह राग द्वेष परिणामों को बाह्य निमित्त बताया था किन्ने पांडे राजमल जी ने देखो पिछले ही पेज पर है पिछले ही पेज पर ज्यादा दूर नहीं हुआ है। जिस प्रकार कलश रूप में तो मिट्टी परिणमती है, कुमार का परिणाम उसका बाह्य निमित्त कारण है, लिखा ना। अब बनारसी दास जी ने कुमार मिट्टी घरे इन सब को बाह्य निमित्त में कह दिया। मेरे कहने का मतलब है, अब आपको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि कल क्या कहा था वो याद ही नहीं है, पर आज क्या कह रहे वो कल से मिलान करने का चक्कर ही नहीं है। हम लोगों को ये तकलीफ है कि वो याद रहता है तो हम कहते हैं देख क्या बात है, स्याही सूखी नहीं है, और एक मिनट में बाह्य निमित्त बदल गया है। तो मेरे कहने का मतलब बाह्य निमित्त की कितने कितने प्रकार से कथन हो सकता है, वो हमारे ध्यान में रहे, अगर वो कहां किस अपेक्षा से कथन है, वो अपेक्षा हमारे ध्यान में रहे, तब जिनवाणी का रहस्य हमारे ख्याल में आएगा। आज या कल शाम को प्रवचन में मैंने सुना कि 86वीं गाथा में एक शास्त्र पे इतना वजन क्यों दिया, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। करे आज सुबह था, आपके में था, टीवी पे था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें इस बात पे वजन दिया था कि यदि हम तीर्थंकर की बात कहते देव तो फिर है कहां, अब निमित्त ही नहीं है, और भले ही निमित्त से काम नहीं होता हो लेकिन निमित्त के बिना तो नहीं होता, इसलिए अब काम होने का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि निमित्त ही नहीं है। यदि गुरु की बात कहते तो देवी सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है मैं कह के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन सर्वत्र सब जगह और सदा दो शब्द हैं, सदा सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। मैंने देखा मैं दीदरागी संत हैं तो किसी जंगल की कुटिया में बैठे होंगे, और हम जब जाएंगे तब ये बोलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, अपने में मंगन होंगे क्यों, और हर गांव में तो मौजूद नहीं है ना, और सदा मौजूद नहीं है, आज इस गांव में तो कल उस गांव में, परसों उस गांव में, जो भी होंगे वे। इसलिए शास्त्र ऐसा है, इसे नित्य बोधक प्रवचन सार में कहा है कि 24 घंटे तुम्हारे साथ रह सकता है, और हर बात में प्रतिबंध है कि ये काम रात में नहीं करना चाहिए, खाना जैसे रात्रि में नहीं खाना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है ना छठवीं, और उसका दूसरा नाम क्या है, ये कोई काम ऐसा है कि जो दिन में नहीं करना चाहिए, मतलब हर काम बटे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि वो पूर्णता निर्दोष नहीं है। नहीं तो ऐसा क्यों होता है, इस टाइम नहीं करना, इस टाइम करना, इस टाइम नहीं करना, इस टाइम हमारी मजबूरी की वजह से हमारे जीवन में आते हैं, तो थोड़ी छूट किसी समय विशेष के लिए आपको उन्होंने दे दी, फिर भी और कई प्रतिबंधों में बांधा, अर्जुन चतुर्दशी को भोजन उपवास करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फलाना कितना, भोजन को भी सब विषयों को त्यागने योग्य बताया, पूरी तरह वो नहीं छोड़ सको तो मर्यादाओं में बांध करके उनने बांधा, लेकिन स्वाध्याय को कहीं नहीं बांधा। जब तुम्हारी मर्जी हो तब करो, कि वो साहब आता है ना समय में नहीं करना चाहिए, छोड़ो तुम उस बात को, अध्यात्म में वो बात नहीं करना, वो तो करुणा योग के जय धवला जैसे महाग्रंथ थे तो उनके लिए बात थी, वो असमय में नहीं करना, और मुनिराजों के लिए थी, घबराना नहीं पूरी बात, क्योंकि सामायिक का टाइम सुबह दोपहर शाम नहीं करना चाहिए, क्या मतलब, सीधा सच्चा अर्थ है कि उनका जो सामायिक का टाइम है और सामायिक छोड़ के स्वाध्याय में लग जाए, तो सामायिक में तो ध्यान बोलते हैं ना, तो ध्यान तो स्वाध्याय से ऊंची चीज है ना, तो ऊंची छोड़कर नीचे करने का निषेध है। असल में संध्या काल में ये भी है, जंगल से गायें आती थी पुराने जमाने में, बहुत धूल उड़ती थी और शास्त्र बहुत मुश्किल से प्राप्त होते थे, अभी ताड़ पत्र के होते थे तो उनमें धूल भर जाएगी, सभी खराब हो जाए, कांटे से लिखे जाते हैं ना सही के कांटे से, तो वो नष्ट होने के चांस ज्यादा थे, उपद्रव होने के चांस ज्यादा थे, एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा थे, तो उस वक्त उनको बिल्कुल सुरक्षित बांध करके अच्छी जगह ही रखना चाहिए। बहुत बातें, कोई स्वाध्याय के लिए कभी निषेध नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गृहस्थों के करने लायक हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो मुनियों के करने लायक हैं। गृहस्थों के छह आवश्यक अलग हैं और मुनियों के छह आवश्यक अलग हैं, लेकिन स्वाध्याय दोनों में है। गृहस्थ भी करें मुनि भी करें, ऐसा एक काम महिलाओं का नहीं है, एक काम पुरुषों का नहीं है। कुछ व्रत ऐसे नक्की कर रखे हैं जो अकेली महिलाएं ही करती हैं। सुगंध दशमी व्रत कोई पुरुष करे तो लोग हंसते हैं, ये तो महिलाओं का व्रत है। क्यों? सुगंधित तन अकेला महिलाओं को ही चाहिए, पुरुषों का चाहे जैसा चलेगा। हिंदुओं में है ना करवा चौथ, कि पति के लंबी उम्र के लिए महिलाएं करें पुरुष। कुछ वृद्ध महिलाओं के हैं और कुछ पुरुषों के हैं, क्यों? लेकिन स्वाध्याय सबके लिए खुला है, ऐसा वृद्ध है। सर्वत्र सदा उपलब्ध है और सदा करना चाहिए। उपवास अश्विनी चतुर्थी का करना चाहिए, स्वाध्याय ऐसा नहीं है कि अश्विनी चतुर्थी को करना चाहिए। ना कोई दिन ऐसा है कि जिस दिन करना चाहिए और ना कोई दिन ऐसा है कि इस दिन नहीं करना चाहिए। और सारी चीजों में ये सब प्रतिबंधित हैं, इसलिए उन्होंने स्वाध्याय पर वजन दिया उपायांतर के रूप में। बात वही चल रही है कि अनंत भगवान के द्विगुण पर्याय जानना है। अनंत भगवान तो बीच में आ गए, वास्तव में तो द्विगुण पर्याय जानना है। द्विगुण पर्याय का स्वरूप जानना ही असलियत में तत्व ज्ञान का जानना है। तो ये स्वाध्याय की महिमा वहां बताई है। तो अभी अपन तरह जो माटी में कलश होने की रहत शक्ति रहे ध्रुव और दंड चक्र चीवर कुलाल बाहज निमित्त हुए, ये अर्थ समझ में आ गया। अब त्यों पुद्गल परमाणु कुंज वर्गनाभेश धरी, उसी प्रकार पुद्गल के परमाणुओं के ढेर ने, पुण्य माने ढेर, अगर भगवान को पुण्य चढ़ाते हैं ना तो उसका मतलब यह है कि ये चावल गिनती के नहीं है। कितने हैं? अगणित हैं। अगणित माने गिने नहीं जा सकते हैं, ऐसा अर्थ नहीं, माने बहुत हैं। ऐसा भी असंख्य होता है रमेश, एक दो वो जो गिने नहीं जा सके और जिन्हें गिने नहीं जाते, जैसे गेहूं के ढेर कितने दाने हैं बोलो, इस भाव होता ऐसा होता है एक रुपए के पांच दाने, हो सकता किसी जमाने में आ जाएगा। मैंने संख्या से नहीं होता, समझे ना। तो कहते हैं क्या, क्यों पुद्गल परमाणुओं का पुंज माने ढेर, बरगना भेष धर कारमान बरगना का भेष बनाकर, ज्ञानावरणादि रूप स्वरूप विचरंत विविधि पर अनेक प्रकार से स्वयं परिणमित हो जाता है। और कौन बाह्य निमित्त कौन है फिर? वहां तो कुमार चक्र जीव दंड था बहुत थे, और बाह्य निमित्त बहिरात्मा ग्रह संशयमति अज्ञानमति, बहिरात्मा है वो बाह्य निमित्त है उनका, है ना। अब यहां बहिरात्मा को कहा, फिर अभी कह देंगे बहिरात्मा नहीं बहिरात्मपन, पर्याय निमित्त होती है द्रव्य निमित्त नहीं होता, और पर्याय से द्रव्य को भी निमित्त कहते हैं, बहुत कठिन आते हैं। गय संशय अज्ञान माने कहते हैं बाह्य में बहिरात्मा का निमित्त पाकर संशय में पैदा हो गया और अज्ञान में उसकी बुद्धि परिणमित हो गई, और जग मां, इसलिए वो जग मां ही इस लोक में अहंकृत भाव से, अहंकृत क्या होता है, अहम करोमि इति अहंकार, मैं करता हूं ऐसे अहंकार भाव से अहंकृत, समझे ना। जैन दर्शन में अहम सर्व शब्द सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो अपने आत्मा का वाचक है। अंग्रेजी में भी आई इज ऑलवेज कैपिटल, सबसे महान वहां भी है, क्यों? तो वो कहते हैं अहंकृत माने वो अपनी महत्वपूर्ण चीज है, और तुमने चाहे जिसको अपना मान लिया और उसको मैं करता हूं तो उसका नाम हो गया अहंकार। देखो वो सबसे बुरा शब्द हो गया। सबसे बढ़िया शब्द था और गलत जगह उपयोग हो गया तो सबसे बुरा हो गया, है ना? जग माही अहंकृत भाव सो काम रूप हुए परिणमति। काम रूप माने यहां ये काम माने काम विकार वाला काम नहीं है, कार्य रूप। काम माने कार्य रूप बोलते ना, कार्य रूप परिणमित होता है। देखो जिस प्रकार मिट्टी में घर रूप होने की शक्ति सदा विद्यमान रहती है और डंडा चाक धागा और कुमार आदि बाह्य निमित्त होते हैं, उसी प्रकार पुद्गल परमाणुओं के पुंज कारमान वर्णाओं का भेष धारण करके ज्ञानावरणादि रूप कर्म रूप होकर विचरण करते हैं। माने वो कर्म पुद्गल के परमाणु ज्ञानावरणादि कर्म रूप अपने आप परिणमे हैं, उन्हें किसी के पर के सहयोग की रंज मात्र आवश्यकता नहीं है। जैसे वो मिट्टी घड़े रूप स्वयं परिणमी है, तब उसमें बहिरात्मा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव बाह्य निमित्त होता है। ऐसा होने पर अज्ञान मति बहिरात्मा संशयशील होकर कर्तृत्व का अहंकार करने लगता है, इस कारण वह कर्मबंध को प्राप्त होता है। इस प्रकार इस कलश में मात्र यही कहा गया है कि अज्ञानी जीव पुराने कर्म के उदय का लक्ष्य करके नवीन कर्म बंध के कारण रूप जो अज्ञान भाव है उसके हेतुपने को प्राप्त होता है। अब देखो एक कलश आगामी गाथा की उत्थानिका का कलश है, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज घुसी हुई है जो हरेक की समझ में नहीं आती है। ये तीन पंक्तियां जो लास्ट की पढ़ी अभी, इनमें क्या कहा है, क्या कहने वाले हैं अभी? ये गाथाएं पांच का एक ग्रुप है जिन्हें अभी अपन पढ़ेंगे। मेरे समझ में नहीं आया कि कौन सी गाथा से कहां तक की गाथा का पाठ करना ये किसने सिलेक्शन किया है। वो मेरे से मिले आकर, ये पांच गाथा का ग्रुप है, उसमें 132 ने गाथाएं छोड़ दी। उस ग्रुप में ही जो हम जिनका व्याख्यान होना है, अरे वो पांच गाथाएं एक साथ ही उनका अर्थ होता है, एक में कितना सा समय लग जाता है? आग बीच के काम होता है ना, मुझे उसको ट्रेनिंग भी देने की। एक इसका भी सिलेक्शन में बहुत सोच समझ के किया जाता है, कौन सी गाथा के कौन सी गाथा तक। तो मैं यहां 24 घंटा उपलब्ध था तो मेरे से पूछा जाना चाहिए था, तो मुझे भरी सभा में नहीं बताना पड़ता क्या है ना? देखो अभी अपने क्या इसमें क्या रहस्य भरा है वो पहले बता देना चाहता हूं, और अंत में पहुंचेंगे 4 दिन में 5 दिन में कब पहुंचेंगे अपन मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी बताता हूं। ये कहना चाहते हैं आचार्य कि जीव नीव को बीच में से निकालो, इतना क्यों रखते हो जीव जीव को भी बीच में? तो पुद्गल का काम पुद्गल करे और जीव का काम जीव करे। अब कहां फंसा हुआ है मामला कि अपने जो ये राग भाव होते हैं वो उनमें पुराना पुद्गल कर्म का उदय निमित्त होता है ना, और उससे नया पुद्गल कर्म बनता है। तो वो पुराना पुद्गल कर्म का उदय और नया कर्म का बनना, तो अब अभी क्या चलता है कि पुराने पुद्गल कर्म के उदय से वो खासकर मोहिनी होगा, चारित्र मोहिनी होगा, दर्शन मोहिनी, उसके उदय में जीव रागादि भाव करता है, वह निमित्त और करता तो जीव है रागादि भाव, समझ गए ना? और रागादि भाव का निमित्त पाकर फिर नई कारमान वर्णा पुद्गल कर्म रूप परिणमित होती है। ये असली मुद्दा है। तो बीच में ये जीव अब फंस गया। अब चाहो तो पुद्गल को भी बीच में कर सकते हैं अपन। कैसे करेंगे? जब क्या पुराने पुद्गल कर्म का उदय और नए पुद्गल कर्म का बनने और बीच में राग, देखो पुराना राग उससे ये बंद और इसके उदय में फिर राग, दो राग के बीच में बिता पुद्गल को बंद डाल दिया। समझ में आ गया? अभय कुमार जी आप लोग तो कम से कम सिर हिलाओ, तो मुझे लगे कहीं कहीं तक तो पहुंच रही है बात। अब ये कहते हैं कि बीज वाले को हटाओ। आज में विश्व में भी यही सारी नीति है। वे कहते हैं कि जो किसान को बेचारे को 10 रुपए किलो नहीं मिलते गेहूं के, और उपभोक्ता को 60-70-50 रुपया देना पड़ते, ये कौन खा जाता है? के बीज वाले, के बीज वालों को हटाओ। जितने बीज वाले होंगे उतने ही उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। हैं? आज के विश्व का यही है कि जो बड़े बड़े स्टोर आते हैं ना, ख्याल में है ना, वो यही तो कहते हैं कि 10 जो बीज वाले थे हमने खत्म कर दिए, सीधा किसान से खेत में खरीदेंगे और बोने के पहले उसे पैसा देंगे बोवाने का, और सारा माल हमको ही देना है, बाजार में तू नहीं बेच सकता, तो सीधा उपभोक्ता को हम देंगे। तो बीज के बहुत हट गए तो हमें जो भी मिलेगा वो बहुत होगा, और तो भी उस उपभोक्ता को सस्ता बहुत मिलेगा। इसकी वजह से बड़े बड़े स्टोरेज की बातें आ गई सामने, और अब इससे भी आगे बढ़ रहे बुक। वो कहते हैं सारे खेत खरीद लेंगे और ये खुद हम खुद ही पैदा करेंगे। क्या वो पैदा भी हम खुद ही करेंगे सब चीजें? हम गेहूं नहीं खरीदेंगे बिस्कुट बनाने के लिए, हम खेत खरीदेंगे और उसमें गेहूं पैदा करेंगे, और वो हम गेहूं के रूप में किसी को एक दाना नहीं देंगे, हम बिस्कुट बनाकर डबल रोटी बनाकर और तुम्हारे कमरे में पहुंचाएंगे, तुम हमारे यहां आना मत सुबह नाश्ते के लिए, समझे ना। लेकिन वो हम जो गेहूं हमको 5-10 रुपया किलो पड़ेगा, हम उसे 200 रुपया किलो देंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि वे 10 जो बीज वाले थे वो एक ही उतना डकार जाता है, क्योंकि उसका एक अधिकार हो जाता है, तो दूसरा संकट है। लेकिन एक सिद्धांत है बस कि बीज वालों को हटाओ। क्यों? अब बीज वालों को हटाने का ये गाथाएं वो हैं। वो क्या कहते हैं, सीधा रखो ना कि पुराने कर्म का उदय निमित्त और नए कर्म का बंध। तो निमित्त क्यों? वो तो पुद्गल पुद्गल रहा तो उपादान ही हो जाएगा, कि वो कैसे होगा? उपादान तो अलग बैठना है, पुद्गल में भी तो दो अलग अलग है ना। तो पुराना पुद्गल कर्म का उदय वो निमित्त, और नया पुद्गल कर्म का बंध ये उसका निमित्त, वो निमित्त ही बनेगा, उपादान नहीं बन सकता, समझ गए? तो बीच में इसने में जीव को क्या कोई निमित्त है, हटाओ इस जीव को ऐसा। और ऐसा वो भी बताया कि हमारा राग राग से बना, क्यों? कि राग से कर्म बने, कर्म के उदय से फिर राग हुआ, तो राग से ही राग पैदा हुआ, कर्म के उदय से क्यों सारा तो बीच में वो क्या आ गया, वो सारा सिरे वो ले जाता है, और हम कभी कर्म 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 कर्म, लेकिन जरा पीछे जाओ तो हम तो राग ही आ जाता है ना। राग से राग बना और कर्म से कर्म बना, तो ये लेन पे जाने वाली है गाड़ी। और ये इन तीन पंक्तियों में ये बात पड़ी है, और बहुत ध्यान से शांति से। इस कलश में मात्र यही कहा गया है कि अज्ञानी जीव पुराने कर्म के उदय का लक्ष्य करके नवीन कर्मबंध के कारण रूप से जो अज्ञान भाव है उसके हेतु बने को प्राप्त होता है। भाषा भी है, तुम भाषा इससे ज्यादा सीधी नहीं की जा सकती है, और पुरानी भाषा पढ़ोगे तो वहां से निकालना ही तुम्हें मुश्किल है, और अभी बहुत लंबा चलेगा तब जाकर के निष्कर्ष निकलेगा। मैंने आपको पहले इससे आपको ध्यान में रहे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो जीव का कर्ता जीव और कर्म का कर्ता कर्म, क्योंकि निमित्त निमित्त तिथि स्वयं ही निमित्त और स्वयं ही उपादान। क्या किसी ने कहानियां चर्चा पढ़ी और पढ़ी तो कुछ समझ में आई? उसमें लिखा है कि कार्य दो प्रकार के थे, स्वनिमित्तक और ऐसे पर निमित्तक, माने स्वादी स्वामे निमित्त होता है, और उसको शब्द वहां आता है हेतु, स्वहेतुक अहेतुक और हेतुक। और जो कहते हैं ना गुरुदेव फरमाते हैं कि राग को भी अहेतुक कहा है, चार से इसका क्योंकि जो पुद्गल कर्म के उदय को तुम हेतु कहते हो मैंने निमित्त कारण के रूप में, तो वो नहीं है, वो स्वयं ही अपनी योग्यता से परिणमा है। तो इसलिए स्वहेतुक स्वनिमित्तक, उपादान भी स्वयं और निमित्त भी स्वयं, तुम कौन होते हो बीच में, खत्म। इस धारा चलने वाली है। अब आपकी दृष्टि इस पे लगी रहेगी तो आपको मिल जाएगी ये बात, और ये नहीं बताता तो इन गाथाओं में से निकालना कठिन है। अब धीरे धीरे निकलेगा ये, ध्यान ना, पढ़ो भाई गाथाएं। अन्नानस उदयो जीवानंद चित्तोत्साहो मा कायबो मिल जीवामो वा लगा अंदाजा इसमें आपको। वो कहते हैं कि मिथ्यात्व का उदय क्या है, कि जो हमारा जो परमे एकत्व बुद्धि आदि का परिणाम हुआ यही मिथ्यात्व का उदय है। वो कोई कर्म भरम है उसका उदय हुआ, आप समझे उसी बात, वो बीच वाले को हटा रहे हैं क्या लगा? अज्ञान का जो उदय है वो क्या है? जीवानाम अतत्व उपलब्धि, जीवों को तत्व की उपलब्धि नहीं हुई पर अतत्व की उपलब्धि हुई, पर इसका नाम अज्ञान का उदय है। वो कोई ज्ञानावरण आदि कर्म है कि मिथ्यात्व कर्म है और उसके उदय से फिर इधर ऐसा ऐसा हो गया, और हम क्या करें ऐसा कुछ नहीं। अब देखो मिथ्या क्या है? जीवस असद्धात्म, जीवों की अश्रद्धा माने उसको सही रूप में समझकर उसमें अपनापन स्थापित नहीं होना, इसका नाम है मिथ्यात्व का उदय। वो कोई कर्म था उसके उदय में आया, वो परमाणु है उसमें इतनी होती है, फिर उदीर्ण हो जाती है, फिर वो हो जाता है, वो उधर की बात नहीं है। वो करुणा नहीं होगा वो करने दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं करने दो क्या यदि वो सब नहीं बताएंगे तो उस सब में कुछ दम नहीं है हमारे इस कहने में, क्या दम रह जाएगा क्योंकि लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या नहीं है कि गुणस्थान आत्मा नहीं है। हमें समय सार में समझाए और उन्हें पता ही नहीं है गुणस्थान क्या है, तो कहते क्या नहीं है समझ में नहीं आता, आत्मा गुणस्थान नहीं है ये क्या है। तो उसे गुणस्थान पूरे समझ में होंगे तब उसे समझ में आएगा कि ये क्या कह रहे। देखो पूरा देखो, अब निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का, समझ में आ गया। और निज तत्व का सिद्धान ही बस उदय है मिथ्यात्व का, अविरमण का सद्भाव ही ये असंयम का उदय, असंयम का उदय मैंने तारतम भोजनी कर्म का उदय। उपयोग की यह कलुषता ही कषायों का उदय है, जो उपयोग में ये कलुषता आ गई ना केवल मन माया रूप, बस एक कषाय का उदय है वो, कोई एक द्रव्य कर्म है क्रोध नाम का तो उसका उदय आता है, उसके अनुसार गुस्सा आता है। क्यों उपयोग की यह कलुषता ही उदय है कषाय का, हो गया कहा गया। और शुभ अब योग का देखो, योग का क्या कह रहे, शुभ में अशुभ, शुभ अशुभ चेष्टा में और प्रवृत्ति में और निवृत्ति में, संयोग और अयोग। निवृत्ति में जो चित्त का उत्साह है उसका नाम उदय का योग है, तुम्हारे चित्त में जो उत्साह हुआ ये करना है ये करना है ये करना है, काय मन वचन इसका नाम प्रयोग है। तो तेरे चित्त में उनके करने का जो उत्साह है उसका नाम योग का उदय है, कहते हैं देखा ना। शुभ अशुभ चेष्टा में तथा निर्वृत्ति में अप्रवृत्ति में जो चित्त का उत्साह है वह ही उदय है योग का। देखो समझ प्राकृत में पढ़ो, तम जान योग उदयम जो जीवाणम तु चित्त उत्थायो, काय में सोहणम असोहणम वा कायब्बो विरधि भावो वा, आया ना सर उसी का वो, उसको हमने उसे पचाया पहले और फिर अपने गद्य जैसे पद्य में लिख दिया। क्या देखो क्या लिखा, शुभ अशुभ चेष्टा में तथा निर्वृत्ति में या प्रवृत्ति में जो चित्त का उत्साह वही उदय है योग का। कितना सीधा सरल भाषा में है, बोलो इससे सरल हिंदी नहीं हो सकती। गद्य में भी लिखते थे, गद्य में भी नीचे लिखाई है, तो इससे कोई सरल नहीं हो सकती है ना। अब इनके निमित्त से के योग से जड़ वर्गणाएं कर्म की परिणमित हो ज्ञान आवरण आदि वसवित कर्म में। अब इन तीनों के योग कौन, मिथ्यात् अवृत्ति प्रमाण कषाय और योग अज्ञान, इनके उदय से, उदय तो होता है निमित्त और वे कारमान वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो जाती है। अब जीव तो ही अपने कर्म के उदय को देख लिया, अभी जी ऐसा चाहता है सारा समझ लिया मालिक का तो हो गया। अब कर्म बनना है तो जड़ है, अब वो तो जीव के सारा तो समझती नहीं है। क्यों तो वो कर्म रूप से इस स्वयं ही परिणमित हुई है। इसमें कोई जीव के जो निमित्त भावों का निमित्त बताया ना, वो तो सिर्फ इसलिए बताया कि तुम्हें से क्यों बनी हमसे क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि तुम्हारा योग और तुम्हारा अज्ञान मिथ्यात्व उसमें निमित्त पड़ा जो तुमसे बन गई। सिर्फ इसके लिए उनको उस परिणमित होने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रमित की जरूरत नहीं है। ये निर्णय कैसे होता कि ये परिणमित हो रही तो किसके साथ चेटेंगी, क्या रमेश क्या है। इनके निमित्त के योग से, योग से माने वो योग वाला योग नहीं है, इनके माने इन सब मिथ्यात् अवृद्धि प्रमाद के साथ योग अज्ञान जड़ कर्मणाएं वर्ग की कर्म की परिणमित हो ज्ञान आवरणादि वसुविध कर्म में, आठ प्रकार के कर्मों में वो परिणमित हो जाती हैं। इस तरह वसुविध कर्म से आबद्ध जीव, जीव के साथ में कर्म से आपका बंध जो हो कैसे होता है वो बताई उनने। जीव जब हो तभी अज्ञान में निज भाव का हो हेतु जीए जिन वर कही, तो वो कहते भाई वो भगवान आत्मा तो अपने अज्ञान में भाव का करता है, मिथ्यात्व भाव का नहीं है, अवृत्ति भाव का नहीं है, ये सब अस्तिका में आने वाला है। इसका उत्तर अखिल अज्ञान में भाव लिखाना। अभी टीका में अपन पढ़ते हैं थोड़ा, तो अब इसका अर्थ तो मैं पढ़ता नहीं हूं, क्योंकि अपन ने अर्थ बता दिया और अभी समझ में सब आ गया। अब निकालो पेज नंबर 214। प्रश्न प्रश्न में यहां से पढ़ते हैं, है ना, जो मैंने आपको कहा कि स्टडी करो महाशास्त्र तत्वा सूत्र में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग इन पांच भावों को बंध का हेतु बताया गया है। और यहां जो बताया जा रहा है उसकी संगति तत्वा सूत्र के उक्त कथन से कैसे बैठे, वहां तो चार थे पांच थे और यहां समय साल में एक जगह चार रह गए और यहां पांच हैं, लेकिन नाम नहीं मिलते हैं। वहां पे मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, यहां क्या है, अज्ञान मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग प्रमाद गिनाया है और उसी अज्ञान घुसर गया। अब उसकी जगह नहीं घुसा, दिक्कत तो ये है, नहीं हम समझते अज्ञान माने प्रमाद है, ये सबसे पहले नंबर पे आ गया, समझे ना। तो ये प्रश्न हमारे चित्र में खड़ा होना चाहिए ना। देखो महाशास्त्र तत्वा सूत्र में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग इन पांच भावों को बंध का हेतु बताया गया है। यहां जो बताया जा रहा है उसकी संगति तत्वा सूत्र के उक्त कथन से कैसे बैठे। अभी प्रश्न का ही स्पष्टीकरण चल रहा है। यद्यपि यहां इन गाथाओं में भी बंध के कारण तो पांच ही बताए हैं, तथापि यहां बताए पांच कारणों में तत्वा सूत्र के तीसरे नंबर पर आने वाला प्रमाद नहीं है। पांच के पांच हैं लेकिन तीसरा नंबर गायब है ना। हम तो बस पांच पांच हो गए, फिर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों पांच पांच है ना दोनों में, झगड़ा खत्म। और यहां प्रथम स्थान पर उल्लेखित अज्ञान तत्वा सूत्र में बताए गए कारणों में नहीं है, अज्ञान वहां नहीं है और यहां अज्ञान आ गया और यहां प्रमाण छूट गया, वहां प्रमाण आ गया और अज्ञान छूट गया। एक बात, दूसरी बात यह है कि इसी समय सार में 109वीं गाथा में बंध के कारण चार प्रत्यय ही बताए गए हैं, अब वहां चार ही बताए थे एक झगड़ा जी, जो तत्वा सूत्र में बताए गए कारणों के समान ही है परंतु इनमें प्रमाद नहीं है। अतः प्रश्न अब कहते तुम्हारा प्रश्न क्या है, इधर क्या है और क्या नहीं है ये तुमने बताया है, लेकिन प्रश्न क्या है। अतः प्रश्न यह है कि प्रथम दो आचार्यों में इस प्रकार के मतभेद क्यों हैं, दो आचार्य माने उमास्वामी और कुंद में ये मतभेद क्यों हैं। कदाचित दो आचार्यों में मत विभिन्नता हो भी सकती है, परंतु एक ही आचार्य ने एक स्थान पर चार कारण बताए और दूसरे स्थान पर पांच बताए, एक कहां तक होते थे ठीक है। क्या पूरन चंद जी आपने भी पढ़ा था ना इधर सब है, कभी प्रश्न खड़ा हुआ दिमाग में है? और अब उत्तर शुरू होता है। अरे भाई, ना तो यहां दो आचार्यों में कोई मतभेद है और ना एक आचार्य ने ही एक ही ग्रंथ में दो बातें कही हैं। पंडित टोडामल व्यक्तित्व कर्तृत्व जब मैंने लिखा था, पीएचडी की थी ना उन पर, तो मैंने लिखा था कि टोडामल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक प्रश्नोत्तर पद्धति में लिखा है, जय सुनना, और ये पद्धति आज यूनिवर्सिटियों में सर्वमान्य है, जितनी भी किताबें कोर्स में हैं उन्हें आधे से ज्यादा विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, और बाजार में जो कुंजियां मिलती हैं प्रश्नोत्तर के रूप में वो सब के पास मिलेंगी, क्यों माने वो प्रश्नोत्तर पद्धति आज वो चल निकली है, जो इस विज्ञान के जमाने में आज आई है यूनिवर्सिटी में वो टोडामल जी ने उस पद्धति को 250 वर्ष पहले अपनाया, इसलिए मैं कहता हूं उस पद्धति के भी फाउंडर हैं, क्या आप समझ रहे ना। और हिंदी साहित्य में जैसा गद्य उनके मोक्षमार्ग प्रकाशक में है, उस जमाने के किसी भी हिंदी के जिसने हिंदी लिखी किसी का भी ऐसा गद्य नहीं है। और पांडे राजमल जी ने जब कलश्टिका लिखी थी तब तो हिंदी में गद्य था ही नहीं। तो सबसे पहले वो गद्य के फाउंडर हैं और ये व्यवस्थित गद्य के फाउंडर हैं टोडरमल जी। और अध्ययनों में नहीं है कोई, ये मैंने सिद्ध किया है उसमें। देखो आप कहां तो वो पांडे राजमल जो पंचाध्यायी में ऐसी संस्कृत लिखते हैं कि अच्छे अच्छे लोग उसमें पानी भरें, गद्य जैसी संस्कृत लिखते हैं। पढ़ो धड़ा श्लोकों को, धड़ाधड़ 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 बिल्कुल क्लियर होता चला जाता है मामला। इतनी अच्छी संस्कृत जिसकी हिंदी जो है सो है, जो है सो है, जो है सो है। अरे तुम ये तो फूलचंद जी ने बहुत सुधार सुधूर के छापाई है, तो असली पढ़ो तुम कलश्टिका। क्या हमने हिंदी साहित्य के गद्य का इतिहास पढ़ा है तो उसके पहले कौन सा गद्य मिलता था मालूम? कि वो जो पृथ्वीराज ने कोई का चिट्ठी लिखी थी पर वो गद्य मिलता है, और कोई गद्य का साहित्य नहीं था पर लिखी थी। और फिर मालूम कि 15वीं 16वीं शताब्दी तक की क्या हालत थी, 84 वैष्णवों की वार्ता लिखी है, वो कहानी लिखी उनने, तो ऐसी गद्य में लिखी है कि भगवान ही मालिक है उसका। वो नमूने दिए हैं मैंने अपने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व में कैसा नमूना था। फिर 252 वैष्णवों की वार्ता में, और फिर उन रुक्कों की हिंदी, रुक्के माने समझते हैं आप, जो व्यापारी कर्जा देते थे ना तो उससे रुक्का लिखवा लेते थे, तो उन रुक्कों की हिंदी में वो हिंदी थी हिंदी के नाम पे, कि इसमें इतने पैसा दिए, इससे ब्याज से दे, और इसे गिरवी में इतना सोना रखा, मकान गिरवी रखा, और उसमें ऐसे बहुत पत्र मिले हैं कि एक बच्चा इतने में खरीदा, 2 रुपए में बच्चा खरीदा, 5 रुपए में बच्चा खरीदा, ऐसे कई मिले हैं। अब किन्ने खरीदे हो वे कहां गए बच्चे मैं जानता हूं लेकिन बताना नहीं चाहता हूं, अकेले में कोई पूछेगा तो बता दूंगा। वो सब लिखे मिले हैं, वो हिंदी थी। अब वो भी ऐसी थी कि उसका अर्थ ही तुम समझ नहीं पाओ आज। क्या उस जमाने में पांडे राजमल जी ने जो हिंदी लिखी, इसलिए उनका महत्व है, हिंदी साहित्य की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। मैंने हिंदी साहित्य के जैन गद्यकार नाम से एक लेख लिखा था पहले, और वो एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की पत्रिका में छपा था, और वो अभी मुझे मिल गया है, लेकिन मेरे घर पर पड़ा है, लेकिन मुझे देखने की फुर्सत नहीं मिली उसे अभी। उसमें मैंने ये सिद्ध किया है दोनों गद्यकारों को। क्या कौन सा? हिंदी साहित्य के जैन गद्यकार। क्या अभी बात का अपनी क्या बात चल रही थी कि वो कलश्टिका का गद्य और ये गद्य, तो उन गद्य में टोडरमल जी का जो गद्य है वो कितना प्रश्नोत्तर शैली का है, और वो प्रश्नोत्तर शैली जो आज आई है यूनिवर्सिटियों में वो उस समय टोडरमल जी ने अपनाई थी। कहना ही ना कि वो प्रश्न भी खुद खड़ा करते थे और उसका उत्तर भी खुद देते थे। तो मैंने उसमें लिखा कि भाई प्रश्न जितने भी कोटेशन समझते ना, आचार्यों के उद्धरण दिए टोडरमल जी ने, उनमें से 90% शिष्य के मुंह में रखे हैं। वो शिष्य प्रश्न करता है तो वो शास्त्र खोल खोल के बताता है, फला शास्त्र में ये लिखा, फला शास्त्र में ये लिखा, गोमर साल में तो ऐसा लिखा, तुम ऐसा कहते हो, पर समय साल में तो ऐसा लिखा, तुम ऐसा कहते हो, बस सीधी भाषा में ही बात करता है। वो शास्त्र का पाठी टोडरमल जी से ज्यादा विद्वान ऐसा लगता है जिसका श्रोता है, प्रश्न करता है, और उनके हर उत्तर उन्हें एक प्रमाण नहीं दिया शास्त्र का और दिए हैं। ये मैंने सब लिखा है, उसमें पढ़ने का अदब है टोडरमल जी की गद्य शैली के मामले में। तो मैंने लिखा क्या है कि उनका श्रोता बहुत बुद्धिमान है। आप समझे ना, वो उनका बेटा गोमानी राम जैसा है। आप जानते हो गोमानी राम पंडित टोडामल जी के बेटे थे, वे बहुत विद्वान थे, और पंडित जयचंद जी छाबड़ा के बेटा भी थे, पंडित नंदलाल जी वे भी उतने ही बड़े विद्वान थे जितने जयचंद जी थे। जयचंद जी ने कहीं लिखा कि ये ग्रंथ मैंने नंदलाल की प्रेरणा से लिखा है। वो नंदलाल से इसे पूछा, वाद विवाद के लिए राज दरबार में बुलाया था, तो मैं तो जाता नहीं हूं, तुम चाहो तो नंदलाल को ले जाओ, और नंदलाल ने वो काम निपटा दिया था राज दरबार का। तो वो क्या कमजोरी है उनके श्रोता में, मैंने गोमानी राम की नहीं कह रहा हूं, उनमें मत जानना, उनका जो श्रोता उनने खड़ा किया मोक्ष महा प्रकाशक में, वो सारे शास्त्रों को पाती है लेकिन वो अपेक्षाएं नहीं समझता, तो उसे हर जगह विरोध भाषित होता है। और पंडित जी उन अपेक्षाओं को समझा समझा करके ही उसकी शंकाओं का समाधान कर, समझ रहे ना, इसलिए वो प्रश्नकार भी एक एक पेज में प्रश्न जाते हैं, है ना, प्रसाद से मोक्ष प्राप्ति संभव, मुक्ति का कारण काय के अनुसार, उपदेश अनुसार होता लिखा ना इसमें, काल लब्धि आये भक्तव्य अनुसार होता है, के कर्म के क्षयोपशम से होता है, के कारण प्रसाद पूर्वक उद्यम करने से होता है। यदि पहले दो कारण कहोगे तो हमें उपदेश काहे को देते हो, क्यों गला पकड़ रहा है ना, कि उपदेश काहे को दे रहे तुम हमारे लिए है, और यदि उससे होता है तो उद्यम तो बहुत लोग करते हैं लेकिन हर एक को सफलता क्यों नहीं मिलती है। ये प्रश्न इतना लंबा है, उत्तर ऐसे ऐसे तुम्हें ना, तो ये प्रश्न है इतना, क्या समझे, ये भी उसी स्टाइल का है। क्या क्या भाई, वो सारे शास्त्रों में अलग अलग बातें कही गई, उस श्रोता को सब पता है, वो पूछ रहा है कि ऐसा श्रोता कहीं से खोज के लाओ, कि नहीं नहीं वो तो टोडरमल टोडरमल का श्रोता भी टोडरमल है, पाठक उत्तरदाता भी टोडरमल ही है, चल रहा है ना। ये प्रश्न कि जो तीन जगह गोमर सार समय सार और समय सार की 109वीं गाथा और ये गाथाएं 132 से चल रही ना, इन गाथाओं को मिलान करके और उसे संगति समझ में नहीं आ रही है, ये क्या चक्कर है, हैं? क्या इसका कोई भरोसा तो है नहीं, एक मिनट में ऐसा कह देते, एक मिनट में ऐसा कह देते, एक मिनट में ऐसा कह देते, ऐसी बात करता। उत्तर अब देखो, अरे भाई ना तो यहां दो आचार्यों में कोई मतभेद है और ना एक आचार्य ने के ही एक ही ग्रंथ में दो बातें कही हैं। समय सार गाथा 109 में प्रमाद को अवृति और कषाय में गर्भित कर लिया गया है। अब ये उत्तर निकालना, ये खुद ने निकाला तो डोमल जी ने, किसी ने नहीं, मत कहीं जी समझ, उन्होंने गर्भित कर लिया है उसने, क्यों क्यों कर लिया गर्भित, तुम्हारे मन का है शायद अब गर्भित कर लो, कि भैया बताओ तुम प्रमाद है क्या, कि चार कसायों का उदय इसका नाम तो अवृत्ति है ना, तो कसाय आ गई ना उसमें, यही तो अवृत्ति है ना, और 25 प्रकार के कसायों में तो प्रमाद किसे कहते हैं बताओ, पहले जानते हो, जानते हो काय को बोलते हो, मन बोलो, अभी मैं बताऊंगा ना, फिर अपने जो तुम जानते हो उससे मिलान करना और फिर अपने मन में ही समझ लेना। ये तुम आलस को बोलते हो ना, मुझे तो आज प्रमाद आ गया, मैं सो गया था, क्यों प्रमाद का परिणाम हमारे लिए तो सोना ही है, और उन्हें साहब प्रमाद तो है नहीं, तो बात एक कहो जल्दी, जरा मुंह से तुम्हारा ऐसा नहीं निकले पा, तब तक तो दौड़ के जाते हो एक गिलास पानी लाके हाथ में, प्रमाद तो बिल्कुल है ही नहीं, क्यों ये दौड़ दौड़ के काम करने वाले आचार्य कहते सबसे बड़े प्रमादी हैं, और जो करवट नहीं बदलते हैं, आंख नहीं खोलते हैं, वे सबसे ज्यादा अप्रमादी हैं। बोलो अब तुम्हारी प्रमाद की परिभाषा क्या काम आएगी, मुनिराज सातवें गुणस्थान में अप्रमादी हैं, आठवें नौवें में जब बिल्कुल आंख तक नहीं खोलते हैं, और हिरण खाल खुजाए तो क्या शेर भी खा जाए तो भी एक भाषा में कहें तो उन्हें पता ही नहीं चलता, वे अप्रमादी हैं, और तुम दौड़ दौड़ के उपदेश देने वाले समय सार लिखने वाले कुंद कुंद प्रमादी हैं, प्रमाद की परिभाषा है। तो प्रमाद काय का नाम है फिर? कि पांच चीजों के मिक्सर का नाम प्रमाद है। पंच सकार क्या है भैया पूरनचंद जी? ये तो बता दोगे, ये तो फटाफट बता देंगे। सोंप सोंठ सनाय, ये पांच सासा मिला दो तो पंच सकार तो हो गया, पंच सकार हो गया, वो चूरम हो गया पांच। तो एक क्या है देखो, चार कसाएं, पांच इंद्रियों की आधीनता और चार विकथाएं और नींद निद्रा और स्नेह, ये पंद्रह चीजें प्रमाद कहलाती हैं। इन पंद्रह चीजों का मिक्सचर हो गए तो उसे प्रमाद कहते हैं। अब बोलो तुम्हारे प्रमाद से काम मिलता जुलता है? अब तुम अपने प्रमाद से अर्थ करोगे। अब यहां प्रमाद का अर्थ है तो इंद्रियाधीनता ये कौन सा हो गया? संयम है ना, कितना बना ना, काय छो प्रतिपाल और पंचेन्द्रीय मन बस करो तो संयम होगा ना। तो पांच इंद्रियों की आधीनता असंयम हो गया क्या? नहीं तो अवृत्ति हो गई ना, तो अवृत्ति जी आ गई ना इसमें, अवृत्ति अवृत्ति में चला गया ये, इसका ये पांच इंद्रियों की आधीनता अवृत्ति में चली गई और चार कसाएं कसाएं में चली गई। बचे का वो बचे हुए तो कुछ नहीं, आधे में नमक जैसे बचे हैं, वे भी कहीं कहीं सेट हो जाएंगे। इसलिए कौन है मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कसाय, तो आगे और पीछे वाले में शामिल करके कसाय प्रमाद खत्म कर दिया। उसने क्या है खत्म क्या किया? शामिल कर लिया ना। अब फिर प्रश्न खड़ा हो गया कैसा फिर ये शामिल हो सकता है तो उमा स्वामी ने क्यों नहीं किया? इतना समझते नहीं थे, नहीं किया क्या? इसलिए नहीं किया कि लोग हम शामिल कर देंगे तो फिर इसमें से निकाल नहीं पाएंगे क्या? इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया। पढ़ो देखो इसमें लिखा है सब, घबराना नहीं। कहां पढ़ रहे थे अपन? हाँ अरे भाई गाथा समय सार गर्भित कर लिया है, क्योंकि चार कसाय, पांच इंद्रियों की अधीनता, चार विकथा, निद्रा और स्नेह, इनके मिश्रण का नाम ही तो प्रमाद है। जो गोमर साहब जीव कांड के गुणस्थानाधिकार में विशेष विवेचन है, जिनको जिज्ञासा हो बाकी वहां से देखें। सुनो काय का वर्णन है वहां, पांच प्रकार के प्रमादों का, वहां अस्सी भंग बनाए जाते हैं गोमर साहब के जीव स्थान में। प्रमाद के मुख्य पांच इंद्रियों का विषय सेवन रूप अवृत्ति और चार कसायों का ही है, अतः कसाय और अवृत्ति में प्रमाद को गर्भित कर लेने में कोई अनुचित नहीं है। तथा विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए पृथक उल्लेख कर देने में भी कोई दोष नहीं है। देखा, अब जब ये छपा हुआ है बहुत दिनों से और आपके घर में फ्री फ्री भी भेज दिया, जैसे भी पहुंचे जैसे पहुंचा दिया, आधी कीमत कर करके फ्री में कैसे भी करके भीतरा विज्ञान में छाप गए, पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? लेकिन फुर्सत नहीं मिली, लिखी है इसमें, मैं तो वो ही पढ़ रहा हूं, बस वो ही बता रहा हूं आपको और कुछ नहीं। क्या उन्हें क्यों अलग कर दिया? अरे भाई स्पष्टीकरण करने के लिए अलग कर दिया, तो इकट्ठा क्यों मिला लिया? तो समझते सब समझदार हैं, ज्यादा बढ़ाने से क्या फायदा, इकट्ठा मिला लिया क्या फर्क है? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये अपेक्षाएं हैं, ये समझना हमारी, जब नहीं समझोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। देखो अब रही बात समय साध में इन गाथाओं में प्रथम स्थान पर उल्लेखित होने की अज्ञान की बात है ना। समय साध ने अज्ञान से उदया सो है मिथ्यात्व आदि चार कारणों के समुदाय रूप ही है। अज्ञान कोई अलग नहीं है, मिथ्यात् अवृद्धि प्रमाण कसाय और योग चारों का नाम अज्ञान है। अब देखो यहां तुम्हारा वो ज्ञान नहीं होने वाला अज्ञान नहीं है, यहां वो औदे का ज्ञान नहीं है, यहां वो छायो समय का ज्ञान नहीं है, ये अलग टाइप का अज्ञान है। इसकी विशेष चर्चा तो कल करूंगा लेकिन थोड़ा अभी पढ़ लेता हूं ना। अब रही बात समय सार की इन गाथाओं में प्रथम स्थान पर उल्लेखित अज्ञान की बात, सो वह तो मिथ्यात्वादि चार कारणों के समुदाय रूप ही है। इस बात का उल्लेख इन गाथाओं की आत्मख्याति टीका में ही है जो इस प्रकार है। टीका में एक किया है, गाथा में तो अलग अलग लिखा और टीका में इस तरीके से लिखा, कि ये तारों मिलके ही अज्ञान है। गाथा का बल ने अज्ञान अलग क्यों लिख दिया, हम धोखे में आ गए, लिख दिया। अरे जो लिख दिया उसे समझो भले आदमी, ये क्यों लिख दिया, मैं गला मत पकड़ो, क्यों सरोता मत बनो। श्रोता होते श्रोता, श्रोता सरोता, तीन तरह के तो होते, तो बहुत तरह के हैं, इसी शब्द से बनते हैं। श्रोता, श्रोता माने सुनने वाले, श्रोता माने जो सभा में आगे आराम से सो जाते हैं, और सरोता माने जिससे बाजी को काटते हैं ना, हर बात काटने का जिनका धंधा है। क्या कौन हो गए, श्रोता श्रोता और सरोता। तो जो समझा रहे वो समझो, सरोता मत बनो, उसे ढंग से सुनो और उपयोग में स्थिर करो, जरूर तुम्हारा कल्याण होगा।